नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। जीएसटी परिषद ने बुधवार को जीएसटी के क्रियान्वयन से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति व्यवस्था इस महीने के बाद भी जारी रखने के बारे में कोई फैसला नहीं किया। पुडुचेरी के वित्त मंत्री के लक्ष्मी नारायण ने कहा कि सभी राज्यों ने क्षतिपूर्ति व्यवस्था बढ़ाने की मांग की, लेकिन इस बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस बारे में अंतिम निर्णय अगस्त में परिषद की होने वाली बैठक में किया जा सकता है। देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के साथ ये निर्णय किया गया था कि राज्यों को इस नई कर व्यवस्था से राजस्व नुकसान होने पर उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। महामारी के कारण 2 साल प्रभावित होने के साथ राज्यों ने इस क्षतिपूर्ति व्यवस्था को भी आगे जारी रखने की मांग की। जीएसटी मामले में निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय परिषद ने बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि मंत्रियों के समूह से कर दर और ऑनलाइन गेम, कसीनो और घुड़दौड़ पर कराधान के बारे में आगे विचार करने को कहा गया है। श्रीनगर और लखनऊ पंतनगर मार्गों पर 1 जुलाई से अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी। इंडिगो के मुख्य रणनीति एवं राजस्व अधिकारी संजय कुमार ने बयान में कहा कि बढ़ी हुई मांग को देखते हुए इन मार्गों पर अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा, दिल्ली लेह, दिल्ली श्रीनगर और लखनऊ पंतनगर मार्गों पर अपनी उड़ानों की संख्या बढ़ाकर हम खुश हैं। उन्होंने कहा कि इंडिगो को दिल्ली लेह मार्ग पर काफी ज्यादा मांग का सामना करना पड़ रहा है। उड़ानें बढ़ने के बाद दिल्ली से लेह के लिए एयरलाइन रोजाना 3 उड़ानें संचालित करने लगेगी। उच्चतम न्यायालय की बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की याचिका पर सुनवाई अवकाश के बाद की जाएगी। नवी मुंबई में एक कंटेनर टर्मिनल के उनियन के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी निविदा के लिए अडानी पोर्ट की बोली को अयोग्य करार दिया गया था, जिसे कंपनी ने बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की अवकाशकालीन पीठ से कहा कि इस मामले में सुनवाई अवकाश के बाद भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि कल और आज के बीच में परिस्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि निविदा खोली जा चुकी है। इस पर पीठ ने कहा कि मामले को अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया जाए। शीर्ष अदालत अवकाश के बाद 11 जुलाई से सामान्य कामकाज शुरू करेगी। उच्च न्यायालय ने बेकार का मामला अदालत में लाने के लिए अडानी को 5 लाख रुपए का जुर्माना भरने का 27 जून को निर्देश दिया था। सरकार ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर को नोटिस जारी कर 4 जुलाई तक पूर्व के सभी सरकारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। एक आधिकारिक सूत्र ने बुधवार को ये जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 4 जुलाई की समय सीमा तय की है। इसका पालन नहीं करने पर ट्विटर मध्यवर्ती का दर्जा खो सकती है, जिसका मतलब ये होगा कि उसके मंच पर की जाने वाली सभी टिप्पणियों की जिम्मेदारी उसकी होगी। सरकार के एक सूत्र ने पीटीआई भाषा से कहा, 27 जून को ट्विटर को नोटिस जारी करके अब तक जारी सभी सरकारी आदेशों का पालन करने को कहा गया है। इस महीने की शुरुआत में भी उसे नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसने इसका पालन नहीं किया। ये अंतिम नोटिस है। इस बारे में ट्विटर को भेजे ईमेल पर कोई जवाब नहीं मिला है। कई मौकों पर ट्विटर का सरकार के साथ विवाद रहा है। 26 जून को ट्विटर ने 80 से अधिक ऐसे ट्विटर खातों तथा ट्वीट की सूची सौंपी है, जिनको 2021 में सरकार के आग्रह के बाद ब्लॉक किया गया। सरकारी सूत्र ने कहा कि कई और ऐसे आदेश हैं जिनका ट्विटर ने अभी तक अनुपालन नहीं किया है। सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 13 करोड़ विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस परियोजना में साइबर सुरक्षा और डेटा भंडारण के साथ क्लाउड आधारित सामान्य सॉफ्टवेयर का विकास समेत PACS को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके जरिए मौजूदा सभी दस्तावेजों को भी डिजिटल किया जाएगा। सरकार ने बुधवार को देश में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली इकाइयों को विपणन के मामले में पूरी छूट देने का निर्णय किया। उन्हें अपनी इच्छानुसार तेल बेचने की अनुमति दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को दी जानकारी में कहा कि मंत्रिमंडल ने घरेलू बाजार में उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने की मंजूरी दी। इसके तहत 1 अक्टूबर से उत्पादन भागीदारी अनुबंध में कच्चा तेल सरकार या उसके द्वारा नामित इकाइयों अथवा सरकारी कंपनियों को बेचने की शर्त समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि उत्पादक अपने क्षेत्र से उत्पादित कच्चा तेल घरेलू बाजार में बेचने को स्वतंत्र होंगे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।